हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आज ध्रुव और मेहर की सगाई होने वाली थी। कृषा भी अपना पूरा टाइम तारा के साथ बिताने के चक्कर में राणा मेंशन नहीं जा पाई थी, तो वहीं याशी की सिक्योरिटी के चलते ध्रुव उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। ध्रुव इस वक्त काफ़ी अपसेट फील कर रहा था, क्योंकि ना तो कृषा उसके साथ थी और ना ही युग। वो दोनों ही उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते थे, और उसके ख़ास पलों में उनके न होने से ध्रुव का मूड ख़राब हो गया था। सगाई से पहले ध्रुव अपने कमरे में था और स्टाइलिश उसे तैयार कर रहा था। उसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्लैक सूट पहना था। हाँ, मेहर की खुशी के लिए उसने सूट पर गोल्डन कलर का ब्रोच लगा रखा था। ध्रुव को तैयार करने के बाद स्टाइलिश वहाँ से जा चुका था। उनके जाते ही शब्द उसके कमरे में आया। शब्द ने गोल्डन थीम को फॉलो करते हुए उस कलर का ब्लेज़र पहन रखा था। कमरे में आते ही ध्रुव का उतरा हुआ चेहरा देखकर शब्द ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? देखो, बहुत कम चीज़ों में तुम अपने डैड से अलग हो, तो उन चीज़ों में उससे अलग ही रहो। फैमिली के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करना सीखो। लेकिन मेरी पूरी फैमिली यहाँ कहाँ है चाचू? ध्रुव ने पूछी हुई आवाज़ में कहा। क्रिश को न जाने क्यों कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार आने के बाद वो वापस यहाँ पर ये तक देखने नहीं आई कि प्रेपरेशन कैसे चल रही है। बस गेस्ट की तरह एंगेजमेंट अटेंड करने चली जाएगी। वहीं डैड का तो कॉल तक नहीं लग रहा। हाँ, इस बात की हैरानी तो मुझे भी हो रही है। तुम्हारे खास मोमेंट को कभी युग ने मिस नहीं किया। तुम्हारी डिग्री सेरेमनी तक में वो गया था, लेकिन आज क्यों नहीं आया? मैंने उसे कॉल किया तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, शब ने हैरानी जताते हुए कहा। इनफैक्ट वो ध्रुव से इसी मामले में बात करने के लिए आया था। अचानक शब्द को कुछ समझ में आया। उसने ध्रुव से आंखें बड़ी करके कहा, डोंट टेल मी वो शादी और एंगेजमेंट से खुश नहीं है। वो ऐसा तभी बिहेव करता है जब चीज़ें उसकी मर्जी के मुताबिक ना हों। ध्रुव ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। शब्द को भी सब समझ आ चुका था। बिल्कुल भी नहीं बदला वो, शब्द ने कहा। तभी मैं सोचूं बात क्यों नहीं हो पा रही है। कोई तरीका नहीं है उससे कॉन्टैक्ट करने का? मलिक अंकल डैड के आसपास ही रहते हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, डैड से बात हो जाएगी। प्लीज़ उन्हें कहिए कि आज का दिन मिस ना करें, वरना सच में मेरा दिन खराब हो जाएगा, ध्रुव ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। और तुम्हें लगता है कि मैं मनाऊंगा और वो आ जाएगा? पहले बताना चाहिए था बेटा, हम सब मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते। पर अब एंड मोमेंट पर सिर्फ बात करने से क्या होगा? जब तुम और कृषा ही उसे नहीं मना पाए तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरी बात मानेगा? शब ने जवाब में कहा। युग की जिद के आगे वो सब लाचार हो जाते थे। कुछ ऐसा ही हाल ध्रुव का हो रहा था। वो अपनी कश्मकश में खोया हुआ था। इस वक्त उसका यही मन कर रहा था कि वो ये सब खत्म कर दे। ध्रुव ने गुस्से में गहरी सांस लेते हुए कहा, जो होगा देखा जाएगा। उसके बिगड़े हुए एक्सप्रेशंस देखकर शब ने तुरंत पूछा, क्या देखा जाएगा और तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी है, मैं ये तमाशा खत्म करने जा रहा हूँ। क्रिश कुछ कहती नहीं है, लेकिन उन्हें मेहर पसंद नहीं है, और डैड ने तो साफ साफ कह दिया था कि वो मेरे किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे। ये तो हमने उन्हें रोक लिया, वरना वो शादी तक खराब करने वाले थे, ध्रुव ने सब बताया। शब्द उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर उससे पहले ध्रुव उसे अनसुना करके वहां से जाने लगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, बस युग और कृषा वहां नहीं थे तो उसके लिए उससे जुड़ी हर खुशी बेमानी सी लग रही थी। लेकिन मेरी बात तो सुनो ध्रुव, शब ने उसके पीछे आते हुए कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसके सामने युग और कृषा खड़े थे। युग ने फुल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। आज भी उसकी पर्सनालिटी एक अलग ही चार्म क्रिएट करती थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं कृषा ने ध्रुव की सिलेक्ट की हुई गोल्डन साड़ी पहनी थी, जिसके साथ हैवी लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज था। उसने अपने बालों को नीचे से हल्का घुंघराला करके खुला छोड़ रखा था। बिल्कुल मिनिमम मेकअप और कानों में हल्की सी एक्सेसरीज के साथ वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों को सामने देखकर मानो ध्रुव की जान में जान आ गई थी। ध्रुव बिना कुछ सोचे समझे युग के गले लग गया। उसने आंखें बंद करके धीमी आवाज में कहा, थैंक गॉड डैड आप आ गए, वरना सच में मैं ये सब खत्म कर देता। अच्छा, सब खत्म करने जा रहे थे, पहले बताना चाहिए था ना, मैं नहीं आता, युग ने सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा और ध्रुव से अलग हो गया। युग की बात सुनकर शब्द उसके पास बढ़ते हुए बोला, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, कहाँ थे तुम? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। तुम्हारा यहाँ आने का इरादा था भी या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मजाक नहीं कर रहा, और सेकेंड थिंग तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम मुझसे छोटे हो, युग ने उसे घूरते हुए कहा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम मुझसे 10 मिनट पहले पैदा हो गए थे और अब उम्र भर का एहसान जताते रहते हो। इसे जाने दो, बाकी सबकी चिंता नहीं है, लेकिन अपने बेटे की खुशियों में तो तुम्हें शामिल होना चाहिए, शब ने उसे समझाते हुए कहा। ये तुम्हें किसने कहा कि मुझे बाकी सबकी चिंता नहीं है? चलो अब ज्ञान देना बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। क्या कहते हो तुम? सो कॉल्ड इमोशनल मोमेंट शेयर करने हैं, युग ने बिना किसी भाव के कहा। तुम हमेशा रूठ के रूठ ही रहोगे, शब ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर जल्दी से वहां से चला गया। उनके जाते ही योग और कृषा दोनों कमरे के अंदर आ गए। कृषा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा, जो बिल्कुल युग की छवि था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कृषा ने अपनी आंखों के काजल से उसके कान के पीछे काला टीका लगाया। मॉम, प्लीज डोंट डू दिस, आई डोंट बिलीव इन दिस, ध्रुव ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। उसके चेहरे को देखकर कृषा मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। तभी युग बोला, तुम बिलीव नहीं करते लेकिन ये करती है, और ये जो करना चाहती है उसे करने दो। मैं लेट आया हूँ तो तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी वाइफ ने भी आपका साथ निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले दो दिनों से शक्ल तक नहीं दिखाई, ध्रुव ने भारी आवाज में कहा। उसकी आंखों में भले ही गुस्सा हो, लेकिन उन दोनों को अपने सामने देखकर उसे सच में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसकी बातों से कृषा को भी समझ आ गया था कि ध्रुव उससे नाराज है, वरना वो कृषा को कभी युग की वाइफ कहकर नहीं बुलाता था। कृषा ने घूर कर युग की तरफ देखा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी साथ आने का कहने की, वरना मैं पहले ही आ जाती, इसके चक्कर में देर हो गई। हाँ तो क्या हो गया, तुम दोनों की खुशी के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये बड़ी बात नहीं है क्या? युग ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा और फिर ध्रुव की तरफ देखकर बोला, बेबी डेविल, अब हमारे बिना रहने की आदत डाल लो, शादी हो रही है तुम्हारी, अलग घर में रहोगे अपनी वाइफ के साथ, तुम दोनों के लिए मैंने दूसरा विला तैयार करवा दिया है। और ये डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं डैड, मुझे आपके साथ ही रहना है, अब आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, आपको मेहर पसंद नहीं है तो क्या आप अब उसे अपने घर में भी नहीं आने देंगे, ध्रुव चिढ़कर बोला। अचानक युग के चेहरे के भाव बिल्कुल गंभीर हो गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, पसंद तो तुम्हें भी नहीं है, तभी दो ही दिनों में ये हाल कर रखा है, अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ, वरना पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी पड़ेगी, और खबरदार जो आगे से मेरी और मेरी वाइफ के ऊपर ऐसे चिल्लाने की कोशिश की, सच में घर से बाहर निकाल दूंगा, उसे धमकी देते हुए युग ध्रुव की आंखों में देख रहा था।
ध्रुव बिल्कुल चुप हो गया। किसी और को समझ आए या ना आए, लेकिन युग उसके हर एक बिहेवियर के पीछे का कारण जानता था। बाहर गेस्ट्स आने शुरू हो गए थे। ऐसे में युग और ध्रुव की आपसी बहस अगर किसी लड़ाई में बदल जाती तो सच में वहां सगाई के बजाय जंग होने वाली थी। कृषा जल्दी से उन दोनों के बीच में आई और उनका एक एक हाथ पकड़ लिया। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज मेरे लिए लड़ना बंद कर दो, ये बाद में भी तो डिसाइड हो सकता है कि ध्रुव कहाँ रहेगा, नीचे चलते हैं, सगाई का टाइम हो रहा है। ध्रुव ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भरी। वो गहरी सांस ले रहा था ताकि अपने गुस्से को काबू कर सके। वो वहां से जाने को बढ़ा ही था कि तभी युग पीछे से बोला, कहाँ जा रहे हो, अपनी एंजल से बात नहीं करनी तुम्हें, या अपने सो कॉल्ड इम्पॉर्टेंट डे पर तुम्हें अपनी फैमिली की कोई जरूरत नहीं है? ध्रुव बिना किसी शिकायत के उसकी तरफ पलट गया। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, मुझे जरूरत है तो भी क्या, कौन सा आप मेरे साथ रहेंगे? तुम्हारे लिए ही अपनी जिद और ईगो को साइड में रखकर आया हूँ, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि एक बार युग राणा जो डिसाइड कर लेता है, उसका फैसला बदलने की औकात किसी इंसान में नहीं है, युग ने सर्द आवाज में कहा। उसके बाद उसने याशी को कॉल किया। वो अभी भी मलिक की देखरेख में थी। युग को पता चल गया था कि कोई उनका पीछा करते हुए श्रीलंका पहुंचा था, तो उसने उन्हें आसानी से धोखा दे दिया, लेकिन फिर उसने याशी को फिलहाल स्कूल भेजना सही नहीं समझा था। याशी के कॉल रिसीव करते ही उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस फिर से सॉफ्ट हो गए, मानो थोड़ी देर पहले उनके बीच कोई बहस हुई ही ना हो। कांग्रेचुलेशंस भाई, याशी ने मुस्कुराकर कहा, तो ध्रुव उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। तुम मुझे कांग्रेचुलेट क्यों कर रही हो एंजल, तुम्हें पता है आज क्या है? ध्रुव ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ, डैड ने बताया था कि आज आप एंगेजमेंट करने वाले हो और कुछ दिनों में आपकी शादी भी होने वाली है। मैं भी आना चाहती थी, लेकिन फिर डैड ने समझाया कि ये एक टेम्प्ररी फंक्शन है, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए, तो मुझे बेवजह ट्रैवल करना सही नहीं रहेगा। जैसे ही याशी ने बताया, ध्रुव और कृषा युग की तरफ घूर कर देखने लगे। न जाने मेरी बेटी को क्या क्या सिखाता रहता है, कृषा ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। ऐसे कैसे मेरी बेटी बोल रही हो, मैंने पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, हमारी बेटी है वो, युग ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। फिर उसने याशी से कहा, डैड कभी कुछ गलत कहते ही नहीं एंजल, लेकिन हाँ कई बार वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये कोई टेम्प्ररी फंक्शन नहीं है और ना ही कुछ कैंसिल होने वाला है, पर हाँ तुम्हारा ट्रैवल करना सही नहीं है, ये डैड ने बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ी देर याशी से बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही ध्रुव ने युग को देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाया और फिर नीचे जाने लगा। युग और कृषा भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। कुछ ही मिनटों में वे राणा मेंशन के गार्डन एरिया में थे, जहां सगाई का अरेंजमेंट रखा हुआ था। मेहर चाहती थी कि उनकी शादी का हर फंक्शन काफी ग्रैंड लेवल पर हो, तो वहां काफी सारे सेलिब्रिटी और बिजनेस पर्सनैलिटीज को इनवाइट किया गया था। वहां माफिया से जुड़े कुछ लोग भी थे जिन्हें प्रतीक रायचंद ने इनवाइट किया था। वो चाहता था कि सबको पता चले कि उसकी बेटी की शादी युग राणा के बेटे से हो रही है। वहीं मेहर भी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और अपने डैड के साथ वेन्यू की तरफ बढ़ रही थी। उसने ध्रुव की सिलेक्ट की हुई ड्रेस पहनी थी। वो ब्लैक और गोल्डन गाउन में काफी एलिगेंट नजर आ रही थी। उसके बालों को आगे से कर्ल करके खुला छोड़ा गया था और पीछे बन बनाया हुआ था। आज जाकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, अब इस शादी को कोई कैंसिल नहीं कर सकता डैड, मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सच में काफी खुश थी और साथ ही प्रतीक भी। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, फाइनली आज सबको पता चल जाएगा कि ऑफिशियली तुम दोनों एंगेज्ड हो और मुझे युग राणा से बात करने का मौका मिलेगा। इतने दिनों से उसके ऑफिशियल नंबर पर ट्राई कर रहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था कि ये सब बस कहने भर के लिए है, प्रतीक ने जवाब दिया। सगाई होने के बाद से युग ने रायचंद फैमिली के किसी भी शख्स से बात नहीं की थी। जैसे ही वे दोनों वेन्यू के अंदर पहुंचे, ध्रुव वहां पहले से मौजूद था। युग को देखकर प्रतीक रायचंद ने भी राहत की सांस ली। मेहर ने जैसे ही वहां बने स्पेशल एंट्रेंस एरिया में अपने डैड के साथ कदम रखा, म्यूजिक प्ले हो गया और सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। लेकिन ध्रुव की निगाहें मेहर के बजाय गेस्ट्स के लिए बनाए गए एंट्री गेट पर थीं, जहां तारा वीर का हाथ पकड़े हुए आ रही थी। इस वक्त उसने ध्रुव की ही सिलेक्ट की हुई ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो उसने कृषा के लिए सिलेक्ट की थी। तारा ने ध्रुव का सिलेक्ट किया हुआ ब्लैक गाउन पहना था जो देखने में बिल्कुल सिंपल था। इवनिंग गाउन होने की वजह से वो नीचे से काफी फैला हुआ था। ऊपर से ऑफ शोल्डर होने के साथ उसका नेक थोड़ा लो था जिससे तारा की हल्की सी क्लेवेज दिख रही थी। ड्रेस पीछे से पूरी तरह बैकलेस थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो तारा के लिए ही बनाई गई हो। बिना किसी एक्सेसरी और स्ट्रेट किए हुए खुले बालों में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तक अपने दिल को काबू करके ध्रुव चाहे जितना तारा को इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन जैसे ही उसने तारा को देखा उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। वो खोई हुई निगाहों से तारा को ही देख रहा था जबकि मेहर उसके पास तक आकर खड़ी हो गई थी। मेहर ने देखा कि ध्रुव का ध्यान उसकी बजाय बाहर की तरफ था। उसने एंट्रेंस की तरफ देखा तो वहां से तारा चलकर आ रही थी। उसे देखते ही मेहर के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले चैप्टर को मिलते हैं।